नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से उसके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन सभी मित्रों को जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर हमें पत्र लिखते हैं और हमें फोन करते हैं और अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचाते हैं। यदि आपके पास भी कोई गवाहियां हैं जो आपने इस वचन को सुनने के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किया है, आशीषों को प्राप्त किया है, तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को इस वचन के अध्ययन के लिए धन्यवाद दे सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। जी हाँ, उसने हमारी चिंता की क्योंकि वह हमसे संबंध बनाना चाहता था और वह हमारी दुर्दशा को देखकर हमें बचाना चाहता था। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो वचन हम सुनते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को इस संसार की तमाम बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। और जो भाई बीमार हैं, निराश हैं, परेशान और चिंतित हैं, आप उन्हें भी शांति दे, छुटकारा दे और चंगाई दे। आज के वचन से हमें सिखाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इब्रानियों की पत्री 2:7 को पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 2:7 में लिखा हुआ है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उससे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। मेरे प्रियो, जगत के रचना के समय परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ कम बनाया था। वह जो स्वर्गदूतों से बड़ा था, उनसे छोटा बनने के लिए तैयार था, वह अर्थात प्रभु यीशु। वह स्वर्गदूत नहीं, मनुष्य बना। हम में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि पुराने नियम में जिसे यहोवा दूत कहा गया है, वह वास्तव में प्रभु यीशु था। मेरे मित्र ने बताया कि वह इसराइल भ्रमण के समय जॉर्डन के याबोक नदी के पार गया था। वह वास्तव में एक नाला है। वहां यहोवा के दूत ने याकूब से कुश्ती लड़ी थी। हम मानते हैं कि वह प्रभु यीशु था। मेरे प्रियो, नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर स्वर्गदूतों से छोटा होकर आया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गदूत मापदंड है। प्रभु यीशु जो स्वर्गदूतों से उत्तम था, वह उनसे छोटा बना। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह हम पर परमेश्वर को प्रकट करना चाहता था। वह परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधि भी है। वह परमेश्वर को इस पृथ्वी पर लाया और मनुष्य को स्वर्ग ले गया। हम स्वर्ग जाएंगे तो केवल प्रभु यीशु के कारण ही, क्योंकि अब हम उसमें हैं। मेरे मित्रों, मनुष्य के लिए परमेश्वर का आरंभिक उद्देश्य था, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। अब मनुष्य वह काम करेगा जो स्वर्गदूतों ने कभी नहीं किया। स्वर्गदूत परमेश्वर के जगत पर राज नहीं कर पाएंगे। वे परमेश्वर के संदेश वाहक हैं। एक स्वर्गदूत ऐसा था जिसने अपना राज्य स्थापित करने के लिए परमेश्वर से विद्रोह किया। वह भोर का सितारा लूसीफर था, जिसे हम शैतान कहते हैं। यशाया की पुस्तक 14:13-14 में लिखा हुआ है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी स्वर्गदूत राज करे, परंतु उसने मनुष्य को राज करने के लिए बनाया है। आज हम मनुष्य को जिस दशा में देखते हैं, वह राज करने के योग्य नहीं है। हर एक देश में वह इस सत्य का प्रमाण देता है, वह राज करने योग्य नहीं है। परंतु उसमें शैतान की मानसिकता है, वह परमेश्वर के बिना राज्य करना चाहता है। मेरे प्रियो, इतिहास में मैंने देखा है कि राजा कैसे खून के प्यासे होते थे। अधिकांश राजा सिंहासन पर बैठते ही अपने भाई बंधुओं की हत्या कर देते थे कि उसके सिंहासन को कोई भी छीनने वाला ना हो। परंतु मुक्ति लाकर प्रभु यीशु मनुष्य को शासन करने योग्य बनाएगा। भजन संहिता 8 में लिखा है, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। परंतु मनुष्य ने अदन की वाटिका में इस अधिकार को खो दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। परंतु प्रभु यीशु ने उसे पुनः प्राप्त किया। हम इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। किसके पांव के नीचे? प्रभु यीशु के, मनुष्य के नहीं। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी उसके हाथ से निकल गई है। वह आज की तिथि में राज नहीं कर रहा है। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु का राज आएगा, तब ना तो अस्पताल की आवश्यकता होगी और न ही कारावासों की, न तो अपराध होगा और न गरीबी होगी। उसके राज में हजार वर्ष का स्वर्ग होगा। भजन संहिता 8 का संदर्भ देने में लेखक का उद्देश्य है कि वह स्पष्ट करे कि भजनकार ने प्रभु यीशु के विषय में लिखा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब आता है इस अध्याय का केंद्र भाग, सबसे महत्वपूर्ण अंश, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। लिखा है, पर हम यीशु को, जी हाँ, देखते हैं। यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके कारण हम यीशु को देखते हैं। हम यीशु को देखते हैं। देखते हैं का अर्थ साधारणता देखना नहीं है। इसका अर्थ है हम सब कुछ समझते हुए उसे देखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सीमित बुद्धि उसमें व्याप्त बातों को ग्रहण नहीं कर पाती है। हम विश्वास में पूरे भरोसे के साथ, आश्चर्य के साथ, श्रद्धा के साथ और आराधना में उससे निहारते हैं। क्या आप यीशु को देखते हैं या निहारते हैं? क्या पवित्र आत्मा ने आपकी आंखों में से पर्दा उठा लिया है, आप उसे देख पाए? लिखा है, हम यीशु को देखते हैं। ध्यान दीजिए कि यीशु का यह नाम मानवीय पहचान है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि इसका नाम यीशु रखा जाए, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 21 पद में। स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, यहाँ बल स्वर्गदूतों से कम नहीं की अपेक्षा कुछ पर है जो समय से संबंधित है। वह कुछ समय के लिए अर्थात केवल 33 वर्ष के लिए कम किया गया था। तब हम पढ़ते हैं, मृत्यु का दुख उठाने के कारण। प्रभु यीशु ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकता है और वह केवल क्रूस पर जान देने से संभव हुआ था। यही एकमात्र मार्ग है। लिखा है, महिमा और आदर का मुकुट। मेरे प्रियो, मृत्यु से तो उसे महिमा और आदर नहीं मिला, परंतु इसलिए कि वह इस संसार में आया और आपके और मेरे पापों के बदले में क्रूस पर मरा था। मैं बार बार कहता हूं कि एक मनुष्य महिमा से भरा हुआ है। 2500 वर्ष पूर्व वह नहीं था, वह परमेश्वर का दूसरा अंग था। हम उसे यहवा कहेंगे, क्योंकि यीशु का अर्थ यहवा है। वह परमेश्वर था और है। वह पूर्ण परमेश्वर था और आज भी वह पूर्ण मनुष्य है। उसने अपने ऊपर मनुष्यत्व को धारण किया। क्योंकि उसने मनुष्यत्व धारण किया है, इसलिए उसे स्वर्ग में महिमा और आदर दिया गया, जो पहले वहां नहीं था। आगे हम पढ़ते हैं कि वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। उसने मृत्यु की पीड़ा ही नहीं सही, परंतु अनुभव किया कि मृत्यु कैसी होती है। मृत्यु को अतः गहराई तक अनुभव किया। मृत्यु का कड़वा कटोरा उसके होठों से बलपूर्वक लगाया गया था। उसने एक एक बूंद पी, और केवल आपके और मेरे लिए। जी हाँ, वह निष्पाप और निष्कलंक था, उसमें कोई भी दोष नहीं था, परंतु उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसने कष्ट सहे। आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से। जी हाँ, उसने परमेश्वर के अनुग्रह से यह काम किया कि परमेश्वर आज आप पर और मुझ पर अनुग्रहकारी होकर हमारा उद्धार करे। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह एक जाति, एक देश, एक समूह के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए खुला निमंत्रण है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। हम इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यीशु एक ऐसा मनुष्य नहीं था जिसमें परमेश्वर ने कुछ किया हो। यीशु के मनुष्यत्व का अर्थ यह नहीं कि वह एक धार्मिक महापुरुष था। इसका अर्थ यह नहीं कि वह शहीद था। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह एक आदर्श स्थापित कर रहा था। यीशु की दीनता ने 2 काम किए। पहला, मसीह के मनुष्यत्व को महिमा और आदर मिला। दूसरा, उसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हुआ। प्रभु यीशु मनुष्यत्व को स्वर्ग ले गया और वहां महिमामय मनुष्य ही नहीं था, परंतु वह मनुष्य महिमा से भरा हुआ था, और यह महिमा इससे पहले स्वर्ग में नहीं थी। लिखा है, उसे यही अच्छा लगा, अर्थात उसने उचित समझा। उसके मनुष्यत्व और उसके उद्देश्य के अनुरूप यही था कि इस प्रकार से वह अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसने सब कुछ बनाया था और सब कुछ उसी के लिए है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह जगत क्यों है, तो यह इसलिए है कि प्रभु यीशु इसका अस्तित्व चाहता था। यह उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण थी। इसका विचार उसके मन में पहले ही से था। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। यह परमेश्वर का वर्तमान उद्देश्य है। परमेश्वर का एक भावी उद्देश्य भी है कि वह अपने राजा को पवित्र पर्वत सियोन पर विराजमान करे। आप भजन संहिता 2 अध्याय को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर अपनी इस योजना को लेकर आगे बढ़ रहा है, परंतु इस समय वह अपने नाम के निमित्त एक वंश तैयार कर रहा है। वह बहुत से पुत्रों को महिमा में ला रहा है। मुझे अभी हाल ही में एक युवक का पत्र मिला जो नशे की गहराइयों में डूब गया था और इस समय वह जेल में है, परंतु प्रभु यीशु ने उसे बचा लिया है। संपूर्ण संसार की यही दशा है। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को बुला रहा है, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचा रहा है, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यह शब्द कर्ता 12 उसके पद 2 में फिर से आएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 15 पद में इसी शब्द का अनुवाद फिर से कर्ता किया गया है। इसका अभिप्राय है अगुआ या किसी काम को आरंभ करने वाला। वह किसी काम को आरंभ ही नहीं करता, उसे पूरा भी करता है। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु आदि और अंत है। वह अल्फा और ओमेगा है। वह आरंभ करता है और उसे पूरा भी करता है। वह उद्धार करता है। उसने हमारे उद्धार का काम आरंभ किया और उसे वह पूरा भी किया है। उसने यह कैसे किया? उसने इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप धारण किया। पृथ्वी पर आकर उसने क्या किया था? उसने हर एक मनुष्य के स्थान पर मृत्यु का स्वाद चखा है। मेरे मित्रों, वह मानव जाति को बचाने के लिए आया था और उसने उनका उद्धार किया है। उसने इस जगत में परमेश्वर को प्रकट किया और आज वह स्वर्ग में मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम उसके याजक होने पर विचार करेंगे तब इस विषय में और अधिक बातों को हम सीखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे अर्थात पूरा करे। इस शब्द का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करने तक काम करें, पूरा पक्का काम करें। यद्यपि वह परमेश्वर का पुत्र था, उसने कष्ट उठाकर सिद्धता को प्राप्त की। यद्यपि वह स्वयं ही परमेश्वर था, उसका सिद्ध जीवन हमारा उद्धार नहीं करता है। कुंवारी से उसका जन्म हमारा उद्धार नहीं करता है। उसकी शिक्षा हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। उसके चमत्कार हमारा उद्धार नहीं करते। उसके जीवन का आदर्श हमारा उद्धार नहीं करता है। मेरे प्रियो, क्रूस पर उसकी मृत्यु ही के द्वारा हमारा उद्धार होता है। वह सिद्ध किया गया। वह क्रूस पर मरकर सिद्ध हुआ था। यदि आप मुझे समझा दें कि परमेश्वर मनुष्य से अलग है और उसने बस इस संसार को बाइबल दे दी है और वह स्वर्ग में बैठकर नीचे मनुष्यों को देखकर कहता है, यह तो बहुत बुरा है कि तुम इस दुर्दशा में हो, यह लो यह बाइबल है और इसे पढ़कर तुम अपना मार्ग खोज लो, तो मैं उससे मुंह मोड़ लेने को तैयार हूं। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जी हां, वह इस पृथ्वी पर आया और स्वयं मनुष्य बना, क्योंकि उसने मेरे लिए क्रूस पर दुख उठाया है और वह मर गया, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए यह काम किया है। वह सिर्फ एक समूह या एक जाति या एक देश या एक रंग के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए, क्योंकि मानव जाति उसकी सृष्टि है, उसकी रचना है, और वह नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य पाप में मरे। वह नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नरक में जाए। वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसके साथ हो। स्वर्ग में हो, आनंदमय और शांतिमय जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है, वह हम मनुष्यों से कितना प्रेम करता है, और यही कारण है कि वह स्वयं परमेश्वर हो करके भी हम मनुष्यों का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आया। उसने हमारे पापों को, हमारे गलतियों को, जिसकी सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि रोमियो के पत्र में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जी हाँ, हमने पाप किया है और उसकी सजा मृत्यु मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, परंतु प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उस मृत्यु को ले लिया, उस सजा को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मैं और आप उस भयानक दर्द से, उस मृत्यु से, उस पीड़ा से बच जाएं। और यही कारण है कि उस लहू के द्वारा ही मुझे और आपको उद्धार की प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों, क्या आज आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं? यदि नहीं, तो आज आपके पास अवसर है कि आप ईश्वर के पास आ जाएं। वह आपका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन में आपने प्रभु यीशु को जाना है, और अवश्य ही आप उसके निकटता में आएंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु का है।